ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब लोग आगे आके बैठिए। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। सब लोग मेरे बात दोहराइए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एक बार और बोलिए, प्रेम से बोलिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वो एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वो परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार है, इसको स्वांश कहते हैं, स्व अंश, और जीव विभिन्न अंश है, ये पृथक पृथक अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु, वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव उनके सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व सूक्ष्म स्वतंत्र होता है, सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बन जाता है और उसे उसके सही उपयोग से वो मुक्त बन जाता है। दोनों ही अवस्था में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वो इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में रत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अति अधिक संघर्ष करते रहना पड़ता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक एक मूलभूत श्लोक है भगवद गीता का, जो हमारे बारे में मूलभूत जानकारी हमको देता है। हालांकि वो 15वें अध्याय में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत आगे की जानकारी है। ममय वांशो जीवलोके, यानी हम जो हैं, हम सब लोग, हमारी यहाँ पर व्याख्या दी गई कि हम कौन हैं। भगवान कहते हैं मम एव अंश, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश होने के नाते भगवान के जितने भी गुण हैं वो भी हमारे अंदर अंश रूप में हैं। और भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश और एक विभिन्न अंश। स्वांश यानी स्व अंश, जो भगवान विष्णु तत्व के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। भगवान परम पुरुषोत्तम है, उनका प्रथम अवतार जो है वो बलराम जी हैं, उसको लीला अवतार कहते हैं। और भगवान के भी 6 प्रकार के अवतार हैं, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, ऐसे 6 अवतार हैं। तो ये 6 अवतारों के, 6 प्रकार के जो अवतार हैं उसके प्रकार से वो अनंत विष्णु रूप में वैकुंठों में निवास करते हैं। हर एक वैकुंठ में एक भगवान के स्वंश होते हैं और अनंत प्रकार के अनंत वैकुंठ लोक हैं। जैसे सरसों के दाने होते हैं एक बोरे में, वैसे अवकाश में, ब्रह्म ज्योति में, भगवान के दिव्य निर्माण में अनंत वैकुंठ लोक तैर रहे हैं। उसके अंदर एक एक वैकुंठ में एक एक विष्णु का स्वरूप है, जो उस वैकुंठ के राजा हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। और उसमें से ही कुछ अवतार पृथ्वी पर ब्रह्मांड में भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, जैसे मत्स्य, कुर्मा, वामन, नरसिंह, प्रभु रामचंद्र। और वो चिरंतन हैं भगवान के अवतार। उनके अंदर, भगवान के अंदर 64 कलाएं होती हैं और इन विष्णु अवतारों में 60 कलाएं होती हैं। 4 कला उनके अंदर नहीं होती हैं, 4 विशिष्ट गुण नहीं होते हैं। उसके बाद में शिव तत्व आता है, ये एक विशिष्ट तत्व है। वैकुंठों के जितने विष्णु स्वरूप हैं उनके, वो तो अनंत हैं और जीव भी अनंत है, लेकिन शिव तत्व एक ही व्यक्ति है केवल, वो है शंकर भगवान। शिव तत्व बड़ा विशिष्ट तत्व है, वो भी भगवान का अंश है। और वो उनके अंदर 55 गुण होते हैं भगवान के। भगवान के 64 में से परिपूर्ण यानी अनलिमिटेड 60 गुण जितने हैं अनलिमिटेड रूप में, अमर्याद रूप में विष्णु में होते हैं, और अमर्याद रूप में 55 गुण शिव जी में होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का निर्माण, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का निर्माण तो भगवान करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर भगवान के 50 गुण परिपूर्ण अवस्था में होते हैं, इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनुरूप में नहीं, भगवान के 50 गुण उनके अंदर प्रकट हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर प्रजा की सृष्टि होती है और हम सब लोगों का निर्माण होता है, मनुष्य योनि का, देवता योनि, राक्षस योनि, दानव योनि, दैत्य योनि, फिर कीटक योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, जानवर की योनि, सस्तन प्राणी, बहुत प्रकार के योनियाँ हैं। ये सब जो है वो अणुमात्र होते हैं और उनके अंदर भी 50 गुण होते हैं। हम सबके अंदर भी 50 गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो अणु मात्र है, बहुत ही नगण्य कह सकते हैं उसको। और ये नगण्य 50 प्रकार के गुण जो होते हैं वो भी ढके रहते हैं जब वो देह धारण करते हैं। जब हम लोग शरीर धारण करते हैं तो ये दिव्य गुण जी भगवान के हमारे अंदर है वो ढक जाते हैं और माया का प्रभाव से कुछ अलग गुण, विपरीत गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर हमारे कैमरा के लेंस के ऊपर जो 4 दाग है तो हमारे सारे फोटो पर 4 दाग आएंगे। वो वस्तु पर दाग नहीं है, लेकिन आपके कांच पर दाग है इसलिए वो सारे डाग जो है वो आपको सारे फोटो पर दिखाई देंगे। आपका वीडियो कैमरा है उस पर चार डाग गिरे हैं तो सारे वीडियो फिल्म पे वो चार डाग दिखाई पड़ेंगे। वो उसको माया कहते हैं, उस वस्तु पर वो डाग नहीं है लेकिन उस चेतना पर है, जिसके माध्यम से हम उसको देख रहे हैं उसके अंदर डाग है। तो वैसे ही मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि, यानी जैसे ही हमको देह धारण होता है, हमारा देह प्राप्त होता है, तो देह का स्वभाव जो है वो आत्मा के स्वभाव से विपरीत होता है, एग्जैक्टली अपोजिट। कैसे? आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है। तो सत का मतलब हम लोग चिरंतन हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम हमेशा रहते हैं सनातन। कैसे नहीं, कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ समय के लिए लीन हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर लीन होते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा हम पृथक यानी अलग रहते हैं भगवान से, अलग हैं भगवान से हम। और जैसे हम देह धारण करते हैं तो सच्चित आनंद, चित यानी नॉलेज ज्ञान, और आनंद यानी आनंद। और शरीर कैसा होता है? असत यानी एक दिन मरने वाला है, कुछ समय के लिए। अचित यानी अज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा उंगली रखेंगे तो लगेगा कि सूर्य मेरी उंगली के आकार का है, वो पूरा नाप सकते हैं उसको, आप उंगली को, वो सूर्य को, चंद्र को भी नाप सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु को आंखों के सामने पकड़ के नाप सकते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरी उंगली चांद के बराबर है, या इस दीवाल के पीछे कौन क्या बात कर रहा है, हमको नजर नहीं आता है ना सुनाई पड़ता है। इस तरह से हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा है। इस शरीर से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान निर्माण नहीं होता है। और फिर शरीर जो है वो दुख से भरा हुआ है। देखो आप कहीं पर भी, आपको छोटी सी उंगली में पत्थर लग गया तो बाकी शरीर में सब सुख है, लेकिन सारा ध्यान उस छोटी उंगली में रहेगा जो तड़प रही है। पोटेंशियल जो है ना शरीर का, वो दुख की ओर है। देखो आप कभी भी ये उंगली में अगर आपको समझो कुछ लग गया, इधर एक थोड़ा सा फोड़ा आ गया, तो दिन रात ये उंगली को पकड़ के आप घूमते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पेट में कोई बीमारी नहीं है, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, मेरा दिमाग भी सही है, मेरी आंखें भी सही है, लेकिन सारा दिन ये ठक 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 करते रहेगा और आप भी ठक ठक होते रहेंगे उसके साथ में। मतलब ये शरीर के अंदर दुख का जो पोटेंशियल है, दुख की शक्ति ज़्यादा है, सुख की शक्ति नहीं है। पूरे शरीर में सुख रहेगा, एक कोने में दुख रहेगा, तो भी दुख पर ही आपका मन भागेगा, उधर ही खींचेगा आपको वो। इसका मतलब अपना शरीर का जो स्वरूप है वो पूरी आत्मा के स्वरूप से विपरीत है। और भगवान को छोड़ देने के बाद, कृष्ण भूलिया जीव, हाँ, कृष्ण भगवान को जब हम छोड़ देते हैं इच्छा से, नहीं चाहिए हमको, तो हम इस विपरीत प्रकार के शरीर में बद्ध हो जाते हैं, इन द ऑपोजिट कंडीशन, इन परवर्टेड कंडीशन, जो हमारा स्वभाव नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो हमारा स्वभाव नहीं है उस चीज़ से हम कवर हो गए तो फिर वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। समझे, आपने श्वास स्नान कर लिया है लेकिन आपने एक बदबू वाला कपड़ा जो कल का परसों का था वो पहन लिया, तो आप तो स्वच्छ हैं फिर भी आपके पास जब जाएंगे तो बदबू आएगी, है ना। फौरन लोग उल्टा करते हैं, वो स्नान नहीं करते लेकिन कपड़े पर स्प्रे मारते हैं, वो भी एक इल्यूजन है। दोनों इल्यूजन है, अंदर भी इल्यूजन बाहर भी इल्यूजन। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है, वो भगवान से प्रेम करता है, लेकिन शरीर के द्वारा बद्ध होने की वजह से वो ऐसे ही भटकता हुआ, तड़पता हुआ, दुख भोगता हुआ, मरता हुआ, बुढ़ा होता हुआ, बीमार होता हुआ नजर आता है। इसका कारण क्या है? मनःषष्ठाणि, षष्ठाणि इंद्रियाणि कर्षति, क्योंकि ये मन जो है वो शरीर को, उनकी इंद्रियों को लेकर कहीं और भागता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब प्रकृति जो है उसके अंदर जो भोग के विषय हैं उसके अंदर वो मन उसको सबको लेके जाता है। चलो यहाँ चलो, जैसे अच्छा दोस्त बोल रहा है चलो सत्संग में चलो, दूसरा तो बोलता है चलो शराब पीने का चलो, चलो डिस्को डांस करेंगे, मांसाहार करेंगे, तो मन जो है वो उधर भागता है, भगवान को छोड़कर जो विपरीत चीज़ें हैं, भोग की वस्तुएं हैं, उधर भागता है। क्यों? कारण आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो आत्मा को चाहे वो बद्ध हो या मुक्त हो, उसको आनंद चाहिए, तो बद्ध अवस्था में वो गलत चीज़ों में आनंद ढूंढने को जाता है, वहाँ पर ठोकरे खाते रहता है। इसलिए कभी लोग पूछते हैं कि अरे ऐसा भगवान क्यों करते हैं, इतना तो वो स्वतंत्र हैं, इतने पावरफुल हैं, सब उनके नियंत्रण में है, पत्ता भी उनके इच्छा से बिना नहीं हिलता है, तो हम लोग को क्यों नहीं बचाते हैं? हम लोग जा रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, फिर भी हमको बचाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एक गुण है, स्वतंत्रता, और वो हमारे अंदर भी है क्योंकि हम उनके अंश है, हम भी स्वतंत्र हैं, और भगवान हमारी स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपके स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखेंगे तो आप प्रेम नहीं कर सकते, आप मशीन बन जाएंगे। इसे बंद किया, बंद हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। वो स्पीकर को और एम्पलीफायर को अपना खुद का दिल नहीं है कि नहीं मुझे अभी बजना है, नहीं, जब भी हमारे प्रभु जी इसको ऑन करेंगे तभी बजेगा वो, उसके अंदर कोई भावना नहीं है। हम ऑन करेंगे बजेगा, बंद करेंगे बंद हो जाएगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा प्रभु जी 10 मिनट और बज दे दो ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन है। लेकिन आप अगर समझो गा रहे हैं और हमने आके आपको बोला बंद करो भैया कथा शुरू हो रही, तो आप कह सकते हैं प्रभु जी 10 मिनट और गाओ क्या? तो हम भी कह सकते हैं हाँ गाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जीव हैं, हमें स्वतंत्रता है, हमारे अंदर भाव है, मन है, भावना है, और वो आदान प्रदान होता है। लकड़ी को हम काटेंगे, उसका कुर्सी बना देंगे, वो कुछ बोलेगी नहीं। आदमी को बोलेंगे आपका एक पैर चाहिए कुर्सी का पैर बनाने के लिए, तो आदमी चिल्लाएगा, क्योंकि आदमी को भावना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्वभाव से वो भागते रहता है, लेकिन शरीर के प्रभाव से और भगवान को स्वेच्छा से भूलने की वजह से फिर वो ठोकरे खाने के लिए कई जगह पहुंच जाता है। सुख तो उसको मिलता नहीं है, प्रयास करते रहता है लेकिन ठोकरे खाते रहता है हमेशा। इसलिए जिस समय हमारी स्वतंत्रता के आधार पर हम भगवान की शरण स्वीकार करते हैं कि यस अभी हमने बहुत ठोकरे खाई, ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ दम नहीं है, अभी हम इच्छा से ये तय करेंगे कि हम अब भगवान की शरण में आएंगे, उस समय जीव की मुक्ति आरंभ हो जाती है। और जो इसी भाव में रहता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन में है, मतलब शरीर में है वो, लेकिन वो जीवन मुक्त यानी जीवन के प्रभाव से मुक्त है। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं, मनस षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकते, हमारे सारे लोगों के मन जो है वो इंद्रियों के खींच कर ले जा रहे हैं और भोग में लगा रहे हैं। भोग में लगते ही उसका एक सुख या दुख का परिणाम होता है। अधिकतर भगवान ने कहा है दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि आज जलेबी खाई तो एक आनंद मिला, आज एक खाई आनंद, दो खाई ओके, तीन खाई ठीक, चौथी खाई तो फिर लगता है कि बस हो गया, अभी पांचवी खाई तो दस्त हो जाते हैं। आज के आज ही दिन समझो, आज एक ही खाई सोच समझ के, कल भी एक खाई, परसों भी एक खाई, बाद में लग गया कि बहुत हो गया, जलेबी में बर्फ़ी मिलनी चाहिए, जलेबी में मज़ा नहीं आ रहा, रोज रोज क्या खाने का उसमें। वही वस्तु यहाँ पर है, लेकिन उसमें आनंद परमानेंट नहीं है। आपकी पसंद की वस्तु आपको रोज सुबह दोपहर को शाम को 7 दिन तक खिलाएंगे, बोले अभी बस हो गया, अभी साउथ इंडिया यात्रा में हम लोग साउथ इंडियन लोग हैं, हम लोग साउथ इंडिया यात्रा में दिन रात रसम राइस सांभर सब खाते रहते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं साउथ इंडियन होने के बावजूद भी बोलते हैं कि बस अभी 7 दिन ना मुंबई जाने के बाद चावल देखने का नहीं, दूर से भी देखने का, पसंद होने पर भी। क्योंकि भौतिक दुनिया भगवान ने ऐसे ही बनाई है, आपको कितनी भी चीज़ अच्छी लगे कुछ समय बाद वही चीज़ आपको सुख देना बंद करेगी और उल्टा दुख देना आरंभ करेगी। जिसके लिए 15 साल तक हमने कॉलेज में प्रेम किया, फिर उसके बाद शादी किया, तो पहले महीने में पहले साल में बहुत थ्रिल रहता है, वाह इतना साल प्रेम किया फिर शादी किया, लेकिन फिर वही पत्नी को लगेगा क्यों शादी किया मैं उससे, 15 साल भी वेस्ट किया और 2 साल भी वेस्ट किया ऐसा लगता है। क्योंकि हम सब लोग केवल स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के वश होकर सब चीज़ों को देखते रहते हैं कि ये औरत 15 साल मैंने प्रेम किया है क्योंकि वो मुझे सुख दे रही है, इसलिए मैं विवाह कर रहा हूँ उसके साथ, और फिर उसी से प्रकृति के स्वभाव के कारण आनंद मिलना बंद हो जाता है, तो सोचते हैं कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है चलो छोड़ दो उसको। स्व मतलब मैं ही इसमें केंद्र स्थान में, मेरा भोग मेरा आनंद मेरा सुख मेरा स्वार्थ सब नहीं थे इसके अंदर, और इसके वजह से जीव को आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो स्वतंत्रता के आधार पर जब हम तय करते हैं कि हम अभी भगवान के शरण में जाएंगे और उनके आनंद के लिए सोचेंगे, और भगवान के आनंद के बाद में दूसरों के सुख के लिए सोचेंगे, किसी भी रिश्ते में किसी भी नाते में किसी भी कार्य में दूसरों को सुख मिलेगा भगवान को सुख मिलेगा इस कार्य से चलेंगे, तो फिर हम कभी किसको छोड़ के भागेंगे नहीं, लगे रहेंगे उसमें। आप बोलेंगे क्या रोज गाना है इसमें, आप प्रभु क्या रोज आठ आठ दिन तक रोज ही गाना ही गाना है, कभी कुछ और कुछ सेवा दो, ऐसा नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा कि उसी में आनंद है, क्योंकि हम मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। जब स्वार्थ की जगह पर परमार्थ आ जाता है, स्वार्थ की जगह पर भगवान आ जाते हैं, तो फिर आपको दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, यही सुख का सार है। एक तो एक सार है, इस दुनिया में अगर दुख सुख ढूंढते रहेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो, क्योंकि बनाने वाले ने उसका प्लानिंग नहीं किया है यहाँ पर सुख के लिए। माम उपेत्य तो कौन थे या दुखालय अशाश्वतम, दुनिया बनाई ही ऐसी है, तुम ये दुनिया में आकर मुझसे अलग होकर सुख दुख ढूंढना चाहते हो, ढूंढो, ढूंढते रहो, जन्म जन्मांतर तक तो ढूंढो, लेकिन मिलेगा ना इसकी गारंटी है, मैंने व्यवस्था ऐसे बनाई है। जो मैन्युफैक्चरर है वो बता रहा है कि इसके अंदर ये रेडियो के अंदर बीबीसी लगेगा नहीं, दो बैंड नहीं है, खाली एफएम ही दिया है, तो कितना भी कोशिश करो, कितना भी घुमाओ उसको, आपको उसमें नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि इसमें नहीं व्यवस्था किया, मैंने सॉफ्टवेयर फिट नहीं किया उसके अंदर। उसी तरह से इस दुनिया के प्रोडक्शन के अंदर वो सुख का साधन जो है वो नहीं जुड़ा है इसके अंदर। तो फिर आप बोलते अरे सुख तो है, अरे जलेबी खाते तो मज़ा आता है हमको, सुंदर स्त्री के साथ घूमेंगे तो आनंद आता है, कोई पद मिल गया, प्रमोशन तो खुशी होती है, लेकिन वो अशाश्वत होता है, कुछ समय के लिए होता है और भ्रम जैसा होता है, लगता है कि खुशी है लेकिन उसके है नहीं। कभी कभी ऐसे बताते हैं आचार्य लोग कि दुख ना होना इसको हम सुख कहते हैं, कि आज भाई कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, सर में दर्द नहीं हुआ, नींद भी अच्छी आई, तो आज सुखी दिन है ऐसा लगता है हमको, दुख का अभाव इसको हम सुख कहते हैं। लेकिन आनंद की कल्पना जो है ना वो एब्सोल्यूट है, वो परम सत्य है। सुख के लिए दुख है, दुख के लिए सुख है, लेकिन आनंद के लिए और कोई नहीं है, वो आनंद एब्सोल्यूट है और वो हमारा स्वभाव है। और जब तक जीव मनस्षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षणी को छोड़कर भगवत स्थानी कर्षति हो जाता है ना, तो भगवान के विषय में वो आकर्षित हो जाता है, कर्षति यानी आकर्षण, मनस्षष्ठाणी इंद्रियाणी भगवत स्थानी कर्षति, तब उसका सुख का आरंभ हो जाता है, चाहे वो अकेला हो, साथ में हो लोगों के, कुछ भी हो, जब तक भगवान के चरणों का सहारा है तब तक उसको दुख नहीं होता है, वो सारे भ्रम से मुक्त हो जाता है। जब तक भगवान का सहारा नहीं है और स्वार्थ के आधार पर जीवन जी रहा है तो वो ठोकरे खाना निश्चित है उसका। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी अड़े अच्छे पद पर हो, जो चाहे जीवन में उसकी सारी इच्छाएं समझो चाहिए वो पूरी होती हो, फिर भी उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका स्थाई भाव जो है वो भगवान के संबंध में है। स्थाई भाव यानी उसका स्वभाव, उसका मूल आत्मा का जो स्वभाव है वो भगवान की सेवा, भगवान के साथ में रहने का है। मछली का स्वभाव जल में रहने का है, घर में आके उसको आप कांच के बोतल में, कांच के घर में डेकोरेशन डाल के, इत्र डाल के उसको रखेंगे तो भी मर जाएगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वो, उसका स्वभाव बहते हुए पानी में रहने का है या बड़े तालाब में रहने का है। जब तक वो अपनी मूल स्थिति में नहीं आता है तब तक उसको सुख नहीं मिलता है। उसी तरह से जीव जब तक भगवान के नहीं साथ जुड़ता है तब तक उसको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ममय वांछित जीवलोके, और वो भी कहा गया सनातन, सारे जीव और भूत जितने भी है वो सनातन है, मतलब आज के लिए खाली टेम्पररी कुछ समय के लिए भगवान के अंश नहीं हो, चलो वही 6 महीने के लिए आप भगवान के अंश हो, बाकी बाद माया के अंश हो जाओ, ऐसा नहीं हो, भगवान के ही अंश रहते हैं चिरंतन काल तक और हमेशा रहते हैं, चाहे आप ब्रह्मलोक में रहे, पृथ्वीलोक में रहे, वैकुंठ में रहे, गौलोक में रहे और जानवर के शरीर में रहे, सब अवस्था में हम सब लोग भगवान के अंश ही रहते हैं। और ये आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसको अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ से आप सही दिशा में आगे जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक भगवान का अंश हूँ, फिर मुझे लीन हो जाना है भगवान के ब्रह्म ज्योति में, तो शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म ज्योति में लोग पहुँचते हैं फिर सुख नहीं प्राप्त करते, फिर दोबारा शरीर धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, भगवत का वचन है। हम लोगों को पहले अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, नंबर वन अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसके बाद में मैं कौन हूँ और दूसरे बाद में भगवान कौन है, और वो जानने के बाद में मेरा भगवान का रिश्ता क्या है, और रिश्ता जान लिया आपने तो भगवान के रिश्ते को अमल करना यही जीवन का सार है। एक मैं क्या नहीं हूँ ये पता होना चाहिए, मैं क्या नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं जिसको समझता हूँ कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, मैं खुद हूँ, अहम ममेति, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, भगवान का अंश हूँ। भगवान कौन है? परम पुरुषोत्तम, हमारे पिता है। और हमारा रिश्ता क्या है? प्रेम का और सेवा का रिश्ता है। ये समझ में आया और अपने आप को सेवा में लगा दिया तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। और जब तक आप लगे रहते हो सेवा में तब तक आपका जीवन परिपूर्ण है। जब ब्रेक लेते हो बीच में कहीं जाते हो घूम के, अभी बहुत बहुत जप कर लिया और बहुत बरसाने में ना बहुत सेवा किया, अभी थोड़ा सा मुझे डिस्को डांस करना है, बहुत हो गया, अभी बहुत दिन से मैं पक गया हूँ इससे, ऐसा लगेगा तो फिर वापस वही माया देवी तैयार रहती है अपनी लातों को देने के लिए अच्छी तरह से। तो जितना हद तक हम लोग इस भाव में रहते हैं उतना हद तक गारंटी है कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन हमारा दिल उसमें आना चाहिए। एक है शरीर से मन से, और वो क्या है, वो प्रभु जी ने जॉब दिया है बरसाने में तो क्या अभी वो अटेंडेंस लगाना पड़ेगा मॉर्निंग प्रेयर में, इधर उधर 8 घंटे की ड्यूटी करने पड़ेगी, कार्ड पंच करना पड़ेगा। इस भाव से काम करेंगे, मन कहीं और है, कुछ करना है आपको, तो इसमें भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब दिल लगेगा आपको आपका इधर उस सेवा में, भगवान के संबंध में, सेवा में आपका दिल लगेगा तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा। मन से नहीं, आत्मा से हमको इस सेवा में लगना है, फिर मन भी अपने आप वश हो जाता है। या तो आप मन की सुनो या मन आपकी सुनेगा। अगर आप मन की सुनोगे तो वो आपको नरक में ले जाएगा निश्चित रूप से, और अगर आपकी मन सुनता है और आप मन को सुनाते हो और मन को नियंत्रण में रखते हो निश्चित गौलोक में पहुंच जाएंगे आप। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरा सहारा लेकर मन को वश कर लेता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है, उसने प्राप्त कर ही लिया ऑलरेडी, आई एम अचीव्ड, मैं मुझे प्राप्त कर चुका है वो। तो ये मन जो है ना वो किधर दिखता नहीं है, किधर है वो, बरसाने में कौन से कमरे में है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत प्रभावी रहता है। इतने बड़े आदमी को इधर उधर भगाते रहते हैं वो, इंद्रियों को भगाते रहते हैं, करो ये करो, खाओ पियो, ऐसे करो वैसे करो, और फिर आत्मा की दुर्गति हो जाती है उसके अंदर। लेकिन भगवान का नाम लेकर इस दुर्गति करने वाले मन को भी हम वश कर सकते हैं, समय लगेगा उसमें लेकिन होगा जरूर। भगवान के शरण जितनी आप लेते हो उतना मन आपके वश में होगा। कुछ देर मन विरोध करेगा आपका, लेकिन आप दुर्लक्ष करोगे, अपना काम करते रहोगे, फिर मन भी आपके साथ आएगा। वो शेर होता है ना, शेर जब उसको जंगल में पकड़ते हैं सर्कस में लाने के लिए, तो उसको पहले पिंजरे में बंद करते हैं, और फिर उसको बहुत चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, घुर्राता है, उसको भोजन ही नहीं खिलाते, 7 दिन तक भूखा रखते हैं। फिर उसका घुर्राने का शक्ति जो है ना पहले दिन बहुत ज़्यादा रहता है, 60 डेसिबल्स, उसके बाद 50 डेसिबल्स, उसके बाद 10 डेसिबल्स, उसके बाद 1 डेसिबल, फिर म्याऊं, खाली शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने आपने खिलाया नहीं ना, उसका गर्जना सुन के डर के आपने कुछ खिलाया नहीं उसको। फिर क्या करता है वो मास्टर, 1 पाव किलो मांस फेंकता है ऐसा, तो तुरंत आके खाता है, फिर कुछ समय नहीं देता है, फिर 2 दिन के बाद 1 पाव किलो मांस फेंकता है, तो फिर वो समझता है कि ये व्यक्ति जो है ना मुझे देता है थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे फिर वो नियंत्रण में आता है। ऐसा ही है, मन पुकारता है खिलाओ, ये पिलाओ, ये बहाओ, यहाँ जाओ, इस औरत के पीछे जाओ, आदमी के पीछे जाओ, ये पैसा नौकरी इसके पीछे जाओ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, छोड़ दो, तो आप सुनो मत उसका, जो बताया गया वो करते जाओ, फिर धीरे धीरे लाइन पे आएगा वो शेर की तरह है। हाँ, एकदम भयंकर खूंखार और गर्जना करके आपको एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला है वो, चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाएंगे आप, जप ही नहीं कर पाएंगे, बोल रहे हैं मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, मैसेज आ रहा है, घंटी बज रही है, देखो किसने इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है, कोई मेल आया है, देखो आप, बोला नहीं, जब तक जप नहीं पूरा होगा तब तक नहीं देखना है उसको, तो फिर जप होगा आपका। और जैसे ही आपने खोला और देखा तो वो जो लिखा है वहाँ अपना मन चला जाएगा, अरे वो अमेरिका से मैसेज आया है, वो बहुत दुखी है माता जी, वो शायद परेशान है, अभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वहाँ पर धुंध आ गई, वो आतंकवाद हो गया एयरपोर्ट पर, वो मन वहाँ चला गया, जप में से ख़त्म हो गया। तो कुछ नियम बनाना चाहिए, नियम किस लिए है? इंसानों के लिए है, मन को नियंत्रण करने के लिए नियम होता है, जानवरों के लिए नियम नहीं होता है, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे ब्रेकफास्ट हो आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के लिए सब नियम होता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, उसको भगवान ने बहुत पावरफुल माइंड दिया है, जो माइंड उसको नरक में ले जा सकता है, लेकिन वो भगवान के पास भी उसको गौलोक में ले जा सकता है, ऐसा माइंड भगवान को, भगवान ने मनुष्य को दिया है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए नियम का पालन करना जरूरी है, और आप नियम पर विश्वास के साथ टिके रहोगे तो निश्चित रूप से मन आपके वश में होगा और भगवान आपके हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।